चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी आपका होस्ट, आपका दोस्त हाजिर हूँ एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है जब चले शहर की ओर।
और मैं हूँ अंजलि जोशी।
अंजलि, जब तुम अपने परिवार से दूर कहीं बाहर घूमने जाती हो तो क्या बीच बीच में अपने परिवार से संपर्क करती हो?
लो नरेन, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं कम से कम दिन में 2 बार घर पर फोन करती हूँ, और अगर कभी मैं फोन करना भूल भी जाऊँ तो मेरे घर वाले मुझे फोन कर लेते हैं।
लेकिन क्यों अंजलि, क्या इतना जरूरी है एक दूसरे की पल पल की खबर रखना?
भाई जरूरी क्यों नहीं है, अगर घर का कोई सदस्य अपने परिवार से दूर है तो उसके परिवार वाले फिक्र तो करेंगे ही ना। और साथ ही दूर रहकर अपने परिवार वालों से संपर्क करते रहने से कहीं ना कहीं हम घर में अपनी गैर मौजूदगी के उस एहसास को कम कर सकते हैं जो उनके मन में हमारे प्रति पैदा होने वाली चिंताओं को जन्म देता है।
अंजलि, ये बात तो हमारे प्रवासी दोस्तों पर भी लागू होती है, तो निश्चित तौर पर उनको भी अपने परिवार से संपर्क करते रहना चाहिए।
बिल्कुल नरेन, आखिर घर पर उनकी पत्नी होती है, उनके परिवार के बाकी सदस्य होते हैं जो उनके लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं।
तो ठीक है अंजलि, आज के एपिसोड में हम अपने श्रोताओं से इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि जब वो अपने परिवार से दूर रहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रखने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कम्बाइंस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
साथ ही दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ आप तक जानकारियां पहुंचाना ही नहीं है बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान करना भी है। इसलिए अगर आपके मन में प्रवास से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 34वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर नारायण की बात से नाराज होने के बाद कल्पना के घर पहुंचता है और वो मधु को हमेशा के लिए छोड़कर उसके साथ रहने की बात करता है। कल्पना को चंदर की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो चंदर को घर से निकाल देती है। उधर गांव में सुषमा के घर हरेंद्र का फोन आता है। हरेंद्र फोन पर मीरा को अपनी नौकरी के बारे में बताता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे जल्दी जल्दी आज चलाओ, दिखाई नहीं देता अभी कितना ऑर्डर बाकी पड़ा है।
बस 5 मिनट और नरन भैया।
अरे 5 मिनट में 50 कस्टमर आ जाएंगे, लंच टाइम चल रहा है राजे। जरा भी फुर्ती नहीं है आजकल के छोकरों में। तो
कर तो रहे ना।
और तुम? हाँ हाँ चंदर, तुमसे ही कह रहा हूँ।
कुछ कहा नारायण?
नहीं तुमसे नहीं, इन दीवारों से कह रहा हूँ। ये दीवारें तो मेरा खाना बनाने में मदद करेंगी। अरे बहुत हो गया यार, इस श्रीदेवी के हसीन सपनों से बाहर निकलो और जल्दी जल्दी काम में हाथ चलाओ।
यार सभी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर नारायण, और वैसे भी तुम्हारे चिल्लाने से ना तो कोई भी काम तेज होगा ना बेहतर।
इसकी जुबान तो कैची की तरह चलती है, कुक तो बन गया पर कुक के काम की रत्ती भर भी अकल नहीं है इसे।
चंदर, 2 चिली पनीर, 2 मलाई कोफ्ता, 1 दाल मखनी और 5 नान, फटाफट लगा दे यार, जल्दी कर भाई जल्दी।
लगा रहा हूँ गज्जू यार, लगा रहा हूँ।
यार हंस तो अपने रेस्टोरेंट में बाहर आई हुई है, खूब टिप मिलेगी यार। चंदर थोड़ा जल्दी कर दे भाई।
यार क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, इंसान हूँ कोई मशीन नहीं यार, काम को काम की तरह ही तो करूंगा ना।
चंदर यार नाराज क्यों होता है, मैंने तो यूं ही कह दिया था। कोई बात नहीं, तू आराम से काम कर, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ ये प्याज मुझे दे दे, मैं काट दूंगा।
मधु, मधु, अरे मधु, तू मुझे सुषमा के घर अकेला क्यों छोड़ आई? क्या हुआ मधु, तू रो क्यों रही है? माँ जी ने कुछ कहा क्या?
दीदी, सबको अपनी अपनी खुशियां मिलती जा रही हैं, पर मुझे मेरे हिस्से की खुशी कब मिलेगी?
मैं समझ गई, चंदर की बहुत याद आ रही है ना। इतने दिनों से उसका कोई फोन भी तो नहीं आया। अरे मधु, अगर चंदर का फोन नहीं आया तो क्या हुआ, तू उसे फोन कर ले।
मैं उन्हें फोन कर लूं? पर दीदी नंबर।
अरे पगली भूल गई क्या, चंदर ने तुझे अपने दोस्त का नंबर दिया था ना?
हाँ दिया तो था, पर दीदी बार बार किसी को ऐसे फोन करना क्या ठीक होगा?
अरे तू कहाँ उसे रोज रोज फोन करती है, तू अभी उस नंबर पे जाकर चंदर को फोन करके आ, चंदर से बात करके तेरा मन कुछ हल्का हो जाएगा।
लेकिन दीदी।
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपनी दीदी की बात नहीं मानोगी?
ठीक है जाती हूँ।
और हाँ उससे बोलना कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गाँव आ जाए, माँ बहुत याद करती है।
इतने दिन हो गए, आखिर कविता आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उसके घर वालों ने उसे वापस मुंबई आने ही ना दिया?
अरे राजेश,
माया जी आप?
हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, और आप?
मैं बोरीवली जा रही हूँ।
जी अच्छा, माया जी क्या कविता ने गांव से अपनी कोई खबर भेजी आपको?
कोई खबर भेजी मतलब? वो तो मेरे साथ ही है, मेरे घर पर।
आपके घर पर?
हाँ, अभी 3 दिन पहले वो गांव से आई थी।
लेकिन उसने मुझे ना फोन किया और ना ही कोई और खबर भेजी, सब ठीक तो है ना?
वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
क्या हुआ उसकी तबीयत को?
अरे घबराने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है।
कमाल है, उसे मुझे बताना तो चाहिए था, मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता।
राजेश फिक्र मत करो, मैंने उसे दवाइयाँ दिला दी हैं और बस 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
देखिए अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बार कविता से आपके घर पर आकर मिल सकता हूँ?
अरे भाई इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लेकिन अभी तो मुझे जाना है।
हाँ।
पर तुम चिंता मत करो, मैं घर पहुँचते ही तुम्हारी उससे फोन पर बात जरूर करा दूंगी।
जी ठीक है, लेकिन भूलिएगा मत।
बिल्कुल नहीं। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ट्रेन आ रही है। नमस्ते।
जी नमस्ते।
लो भाई खत्म हो गया।
अरे क्या खत्म हो गया नारायण, खाना?
अरे खाना नहीं गज्जू, लंच टाइम। अब जाकर थोड़ी सांस आई है। ए राम कितना काम करना पड़ता है।
अच्छा। अरे प्रकाश तेरा क्या चल रहा है यार? अरे तेरा वो लोन मंजूर हुआ या नहीं?
अरे हो गया गजेंद्र, बस अब जल्द ही मैं और मेरी बीवी मिलकर अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे। अब ये नौकरी नहीं होती है मुझसे।
सही है यार, अगर बीवी समझदार हो ना तो दोनों लोग मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्यों चंदर?
हाँ हाँ ठीक कह रहा है यार तू।
अरे चंदर, अरे कहाँ जा रहा है तू? चंदर सुन तो। चंदर यार बात क्या है, कल से देख रहा हूँ तू कुछ परेशान है। देख अगर कोई बात है तो मुझे बता यार, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ।
नहीं यार कोई बात नहीं है।
कुछ बात तो जरूर है चंदर, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना यार तो बताना भाई परेशानी क्या है।
यार यहाँ सब लोग कितने खुश हैं, तू अपनी पत्नी से दूर रहकर भी खुश है, ये प्रकाश भी खुश है, यहाँ तक कि नारायण भी जैसा है खुश है, यार बस एक मैं ही हूँ जो खुश नहीं है।
अरे तो भाई तुझसे किसने कहा कि तू दुखी रहे, तू भी खुश रहे।
लेकिन कैसे यार, देख मुझे कल्पना अच्छी लगती है।
ये बात है।
लेकिन उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, यहाँ तक कि यार मुझे अपने घर तक आने से मना कर दिया। वहाँ गाँव में मधु है, वो कहती है कि उसे मेरे पैसों की जरूरत नहीं, वो खुद पैसों का इंतजाम कर रही है, पता नहीं कैसे और कहाँ से।
ओ, अब समझा, तो ये है तेरी परेशानी। चल मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ, ये देख।
ये कौन है?
ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। तुझे पता है चंदर ये मुझसे दूर रहकर भी खुश क्यों है? क्योंकि इसे मुझ पर विश्वास है कि उसका पति अपने परिवार के लिए पैसे कमाने शहर गया है। और पता है मैं खुश क्यों? क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है चंदर, हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, इसीलिए हम दोनों खुश हैं। लेकिन तेरे और तेरी पत्नी के रिश्ते में विश्वास खत्म हो गया है, और इसमें गलती तेरी पत्नी की नहीं है, तेरी है। क्योंकि यहाँ आने के बाद तूने उसका विश्वास तोड़ा है चंदर, दूसरी औरतों के चक्कर में तू पड़ा है, और तुझे डर लग रहा है जैसे तेरी जिंदगी में कोई और औरत आ गई है, कहीं तेरी पत्नी की जिंदगी में कोई और ना आ गया हो जो उसकी मदद कर रहा हो।
पर गज्जू।
हाँ सिर्फ यही तेरी परेशानी की वजह है चंदर, मैंने तुझसे पहले भी कहा था यार, ये दो नावों की सवारी करना छोड़ दे भाई, नहीं तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। देख अभी भी वक्त है चंदर, संभल जा।
शायद तू सही कहता है गज्जू, सारी गलती मेरी ही है, मैं मधु के साथ साथ खुद को भी धोखा देता रहा कि कल्पना मुझे पसंद करती है, जबकि वो तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार, बहुत बड़ी।
चंदर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर कल्पना से माफी मांग ले, और हाँ भूल कर भी कभी असुरक्षित सेक्स करने की गलती मत करना। देख भाई असुरक्षित सेक्स भयानक बीमारियों को जन्म दे सकता है। चंदर कहीं तेरे साथ भी?
नहीं नहीं यार मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अब फिर से कभी जीबी रोड जाने की गलती नहीं करूंगा।
हेलो
हेलो हेलो जी, मैं मधु बोल रही हूँ।
मधु? अच्छा चंदर शायद तेरा फोन है।
हेलो
हेलो जी, मैं मधु बोल रही हूँ।
मधु तुम?
हाँ कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ मधु, घर पर सब कैसे हैं?
सब बिल्कुल ठीक है, माँ आपको बहुत याद करती है। और सुनिए, हरिंदर भैजी की नौकरी लग गई है ऋषिकेश में।
अच्छा?
हाँ, आपकी नौकरी कैसी चल रही है?
अच्छी चल रही है मधु।
आप वो,
अरे अरे रुक क्यों गई, तुम कुछ कह रही थी?
आप कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं आ जाते? आपकी बहुत याद आती है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हेलो 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 मधु, मधु हेलो, शायद फोन कट गया। कच्चू यार, मधु सचमुच मुझसे कितना प्यार करती है, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है यार।
अंजलि, तुम्हें क्या लगता है, चंदर पर गजेंद्र की बातों का कुछ असर पड़ेगा क्या? वो कल्पना की दोस्ती का सही अर्थ समझ पाएगा? और क्या मधु को चंदर से उसके हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी?
अरे 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 नरेन, इतने सारे सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? समय के साथ साथ इन सब सवालों का जवाब तुम्हें और हमारे श्रोताओं दोनों को खुद ब खुद मिल जाएगा।
हाँ भाई, ये बात तो है,
लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं कि हमारे प्रवासी दोस्त शहर में आने के बाद अपने परिवार से संपर्क करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और इस बारे में हमारे श्रोताओं से बातचीत की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने।
बीवी से संपर्क के लिए मैं कुछ न कुछ खास करता रहता हूँ। कोई भी बंदा गांव जाता है तो उसके पास उसके लिए थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ और फ़ोन पर संपर्क में रहता हूँ।
मैं उसको फ़ोन करता रहता हूँ, और कोई भी मेरे हमारे गांव का घर जाता है तो उसके लिए 1000 रुपये भेज देता हूँ, यही खास करता हूँ।
मैं अपनी पत्नी से संपर्क फ़ोन द्वारा करता हूँ, और मैं 3-4 महीने में घर में चक्कर मार कर भी आ जाता हूँ, इसलिए कि सारा कुछ परिवार में मेरे को ही देखना पड़ता है।
हम फ़ोन करते रहते हैं हमेशा, और फ़ोन नहीं भी हो तो हम चिट्ठी से संपर्क हो जाते हैं।
मैं अपनी पत्नी से संपर्क करने के लिए फ़ोन द्वारा कर लेता हूँ, और 2-3 महीने बाद घर भी चला जाता हूँ, इसलिए कि उसको ऐसा ना लगे कि मेरा पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता।
भाई, कोई चिट्ठी के जरिए अपने परिवार से बातचीत करता है तो किसी ने फोन को परिवार से संपर्क करने का जरिया बनाया हुआ है। खैर, तरीका कोई भी हो, नरेन, हमें ये जानकर ज्यादा खुशी हुई कि हमारे प्रवासी दोस्त अपने परिवार से संपर्क करते रहते हैं।
दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी अपनी छोटी सी लापरवाही की वजह से STI के शिकार बन गए थे।
उन्होंने STI का पूरा और पक्का इलाज करवाया और आज वो पूरी तरह STI मुक्त हैं।
आइए आपको सुनवाते हैं उनके साथ की गई बातचीत के कुछ खास अंश।
मेरे को यौन रोग हो गया था, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि मेरे को STI हो गया है। जब मेरे गुप्त अंगों में लगातार खुजली होने लगी और घाव होने लगे, तब मैं मेडिकल गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि मेरे को STI हो गया है। तब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, इलाज करने से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी जो मैं अभी भी खा रहा हूँ।
नरेन, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलो।
नरेन, क्या मैं सचमुच झगड़ालू हूँ?
थोड़ी बहुत।
क्या?
अरे नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे किसने कहा कि तुम झगड़ालू हो?
नहीं, वो क्या है ना, कभी कभी मुझे लगता है, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ मेरा हमेशा आसपास वालों से पंगा हो जाता है।
अच्छा?
और फिर झगड़ा भी हो जाता है।
लेकिन अंजलि, तुम्हारी सबसे खास बात ये है कि तुम बाद में सबको मना भी लेती हो।
हाँ, वो तो है, लेकिन दोस्तों, आप अपने कार्यस्थल पर एक अच्छा माहौल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे।
अरे ये क्या कह रही हो अंजलि तुम?
वो तो भैजी बताएंगे ना।
अच्छा, तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल। बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
भैजी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे प्रवासी दोस्त जहाँ काम करते हैं वो उस जगह के माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
देखो नरेन, आम तौर पर लोगों के व्यवहार को मैं तीन हिस्सों में बांटता हूँ और उनके व्यवहार उनकी परिस्थितियों से जुड़े होते हैं।
जी भैजी।
तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ लोग आपसे अनुभव में ज्यादा हैं, यानी कि आपके सीनियर्स हैं। दूसरे वो जो अनुभव में आपके बराबर हैं और आपके साथ काम करते हैं। और तीसरे वो हैं जो अनुभव में आपसे कम हैं और आपसे नीचे काम करते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, आपके सीनियर्स तब खुश होंगे जब आप उनको बेहतर काम करके देंगे। आपके साथ काम करने वाले तब खुश होंगे जब आप उनके साथ मिलकर सहयोग की भावना के साथ काम करेंगे। और आपके नीचे काम करने वाले लोग तब खुश होंगे जब आप उनके काम की इज्जत करेंगे।
बिल्कुल भैजी, मेरे पापा भी यही कहते हैं कि इंसान की इज्जत उसके काम और विचारों से ही होती है।
वाह वाह, क्या बात है, आपके पापा बहुत सही कहते हैं। तो तीनों ही स्तरों पर आपको काम करने वाले लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। आपको ये जानना होगा कि वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। और जब आप इस बात को समझ जाओगे और इन बातों को अपनाओगे तो आपके कार्यस्थल का माहौल अपने आप आपके अनुकूल बन जाएगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है भैजी की ये राय आपके बेहद काम आएगी और इसे अपनाने के बाद आप भी अपने कार्यस्थल पर एक स्वच्छ वातावरण की कल्पना कर सकते हैं।
जोला हम साथ माँ कल भाई बरात माँ अभी जोला हम साथ माँ वकी बोलो खाणु केणु वकी ना चला रात माँ वकी बोलो खाणु केणु वकी ना चला रात माँ बड़ा भैका सोर्यास माँ क्यालों की मजाक माँ बड़ा भैका सोर्यास माँ क्यालों की मजाक माँ गुरु न मान्या दगड़ियो इन बंदु ब्यो काज माँ गुरु न मान्या दगड़ियो इन बंदु ब्यो काज माँ
और अब बारी है काम की बात की।
काम की बात।
नरेन, अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी?
पैसे की।
और जिन लोगों के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं है वो क्या करेंगे?
वो बैंक से जाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं।
जी हाँ, अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं, जैसा कि हम ये जानकारी एक बार पहले भी दे चुके हैं। परंतु जो श्रोता देर से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और जो किसी वजह से उस समय ये जानकारी नहीं सुन पाए थे, उनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए आज हम ये जानकारी एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं।
अगर आप अपना काम शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई और देहरादून जैसे बड़े शहरों में ये बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने निकटतम बैंक में जाकर या फिर वहाँ फोन करके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के अधिकारी से बात करने और बैंक द्वारा ऋण संबंधी शर्तों और नियमों को जानने के बाद सही ऋण का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऋण की ब्याज दर की तुलना अन्य बैंकों की ऋण ब्याज दरों से भी कर सकते हैं, और इसके बाद आपको जो ऋण बेहतर लगता है आप उसे बैंक की औपचारिकताएं पूरी करके ले सकते हैं।
और अगर आप उत्तराखंड या उसके आसपास के किसी गांव में रहते हैं तो भी आप स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने निकटतम ग्रामीण बैंक से संपर्क करना होगा, जहां आपको स्वरोजगार से जुड़ी ऋण संबंधी सभी जानकारियां आसानी से मिल सकती हैं। आप वहां से अपना काम शुरू करने के लिए 25,000 से 50,000 रुपए तक की राशि उचित ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, स्वरोजगार से जुड़ी और ऋण संबंधी अन्य जानकारियों के लिए आप देहरादून स्थित ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय में भी बात कर सकते हैं। वहाँ का पता है 18 न्यू रोड, देहरादून।
आप चाहें तो वहाँ पर फोन भी कर सकते हैं। नंबर है 0135271066 और 27106661।
तो दोस्तों, ये तो थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
SMS करने के लिए हमारा नंबर है 9197176782।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है उस चुनिंदा चिट्ठी को पढ़ने का जो जिताने वाली है किसी एक विजेता को आज का इनाम। तो दोस्तों, आखिर कौन है आज के विजेता ये हमें बताएंगी?
मैं, यानी अंजलि। तो दोस्तों, आज के विजेता है मेरठ के अशोक चौहान। ये लिखते हैं, एक बार की बात है, मैं अपने मैनेजर के साथ हरिद्वार से दौराला जा रहा था और हमारे अलावा उस बस में लगभग 30-40 लोग और बैठे हुए थे। बस जब मेरठ बस अड्डे पर रुकी तो सारे यात्री धीरे धीरे करके गाड़ी से उतर गए। सारे यात्रियों के उतरने के बाद मैं भी उतरने वाला ही था कि मेरी नज़र एक काले रंग के बैग पर गई। मैंने बिना किसी को बताए वो काले रंग का बैग उठाया और इंक्वायरी ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर के बाद इंक्वायरी ऑफिसर के पास उस आदमी का फोन आया जिसका के वो बैग था। उस आदमी ने ऑफिसर को उस गाड़ी का नंबर और उस काले बैग का हुलिया बताया। तभी मैंने ऑफिसर से कहा कि ये काला बैग उनका है और मेरी उनसे जरा बात करा दीजिए। फोन पर मैंने उनसे कहा कि मैं ये बैग इंक्वायरी ऑफिस में दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि आप मेरा आधे घंटे तक इंतजार कर लो। आधे घंटे बाद जब वो आए तो मैंने उनका बैग उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने मेरा धन्यवाद दिया और बैग को खोल कर दिखाया। उन्होंने बताया कि इस बैग में मेरी लगभग पूरी जिंदगी की कमाई है। इस तरह उन्होंने मुझे धन्यवाद करते हुए कहा कि आप इन पैसों में से जितना पैसा रखना चाहते हैं रख लो, पर मैंने मना कर दिया और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी राह ले ली। आगे ये लिखते हैं नरेन के, मैंने जीवन में एक बात सीखी है कि आप सबके साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और जिंदगी में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए लेकिन आप उन कठिनाइयों का डटकर सामना करो।
तो श्रोताओं, अशोक चौहान जी ने तो हमें बता दिया कि कर भला तो हो भला, और अशोक जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, अशोक जी की तरह आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही आकर्षक इनाम, लेकिन उसके लिए आपको हमें भेजनी होंगी अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों वाली चिट्ठियां। और चिट्ठियों के लिए हमारा पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है shaherkior@gmail.com।
कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल फड़िए,
करिए या करिए चक दे
अंजलि तुम्हारे लिए एक सवाल।
हाँ पूछो।
दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क कौन से देश में है?
नहीं पता।
अरे भाई अपना भारत।
अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब तुम्हारे लिए एक सवाल।
पूछो।
उस पोस्टल नेटवर्क के जरिए एक दिन में कितने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं?
भाई ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ उन संदेशों का हिसाब हमारे पास जरूर है जिन्हें हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने परिवार दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजते हैं।
अच्छा वैसे नरेन आज के संदेशों का क्या हुआ जो हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं?
तुम्हें सुनने हैं?
अरे भाई तुम मेरा ना सही, कम से कम हमारे उन श्रोताओं का तो ख्याल करो जो इस वक्त रेडियो सेट से इस उम्मीद में कान लगाए बैठे हैं कि क्या उनके किसी अपने ने भी उनके लिए कोई संदेश भेजा है।
तो ठीक है बिना देर किए सुनते हैं आज के संदेश।
मैं मैसूर चू मेर स्वार पिंगला पानी ची कि मैं तो मेर मजगिन ची बेजी तेरे बार दूनो चू बेज नौ राकेश ची नौ एडर होना छो मैं मैं फोन मैं तो भी जाइ छो तो फोन भी सब ठीक छी माँ भी ठीक छी पिता भी हाथ पीड़ा रोनी उनी ठीक रो ना कदर पीड़ा ओणी रोनी आप घर फोन भी ठीक छी ना लोड़ कॉप पेंशन से अजल भी जाना रो ना पर तेन मैं ले जा रो ना बाड़ा देखे कंदा तुम्हार बाल बच्चे कमड़े छिन कथिया में तुम्हार बाल बच्चे रोना न काका मन सु कथिया में रोना न कि भाभी ते मेरे प्रणाम बोलिया।
म्यार नाम अनिल छे और मैं ग्राम ग्रुप लिख रहन वाल छु जिला पौड़ी के डोबाला के और मैं रेडियो द्वारा संदेश भेजन चाहनो छु ऊपर मम्मी पापा को नी मेरी मम्मी नाम नंदी देवी छे और पापा का नाम गोविंद सिंह छे जो ग्राम ग्रुप में जिला पौड़ी के डोबाला रनी और म्यार संदेश खास यू छे कि माँ तेरी तबियत खराब हुई छे मैं तो बड़ी चिंता लगी छ और फोन कह कर मैं तो बता दिया कि तेरी तबियत ठीक हुई छी कि नहीं हुई।
मैं नाम अंकिता नेगी छा मैं कोटगाड़ को रहने वाला छू मैं अपने दीदी संगीता ते संदेश देना चाहता हूँ उस गाड़ी से श्यामपुर हूँ। हाँ दीदी मैं अंकिता बोल छू तो रविवार देनु और मैं एक ठीक हूँ तू कभी फोन भी नहीं कर दी या हम सब ठीक हूँ।
मेरा नाम गोला छे और मैं ग्राम मसन को लेकर रहने छू जिला पौड़ी गढ़वाल और मैं अपने दगड़िया शार्दुल खान रेडियो द्वारा एक संदेश भेजन चाहनो छो कि तू दिल्ली कब आन छे और कभी कभार तो हम कण फोन कर लिए कर इन लगिन कि दूर जाए के कभी याद नहीं करें और समय रह के बहुत याद करें।
तो दोस्तों ये थे आज के संदेश और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं।
नंबर है हमारा 9197176782 23।
दोस्तों अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उस जानकारी को हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए और अगर आप पहले से ही किसी ऐसे प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें चिट्ठियों के जरिए भेज दीजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shahrkiore@gmail.com यानी shahrkiore@gmail.com।
पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और अब वक्त आ गया है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।